शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के दो संभावित ढंग होते हैं, एक व्यवस्थित तथा क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, दूसरा वह हिंसक परिवर्तन है जिसे हम क्रांति कहते हैं। यह निराशा व हताशा पर आधारित है, घृणा व दमन से प्रेरित होता है तथा प्रायः सुविज्ञ ज्ञान के अतिरिक्त गहन भावनाओं द्वारा निर्देशित होता है। शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम शिक्षा में विस्तार तथा सुधार कर अपने सामाजिक विचारों तथा संस्थाओं को आधुनिक बना सकते हैं। समाज के प्रति शिक्षा का उत्तरदायित्व शैक्षणिक गतिविधि के तीन महत्वपूर्ण चरण प्रस्तुत करता है। पहला, सामाजिक विरासत का भेदभावपूर्ण संरक्षण। दूसरा, निर्भीक सामाजिक आलोचना। तीसरा, दृढ़ एवं सुविज्ञ सामाजिक योजना। पेज नंबर 145। यह हमेशा की भांति महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को अतीत की विरासत को संचारित करना चाहिए। इस ज्ञान के बिना विशेष रूप से हमारी वर्तमान प्रौद्योगिक तथा सामाजिक प्रणाली को संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान के बिना मनुष्य असहाय होगा। परंतु इसका कोई कारण नहीं है कि हम पूर्ण सामाजिक विरासत की आलोचना किए बिना ही स्वीकार कर लें। हमें उन विचारों को त्याग देना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अतीत के अज्ञान, अंधविश्वास तथा हठधर्मी की देन हों। हम समाज की वर्तमान संरचना पर तब तक निष्पक्षता से विचार नहीं कर सकते जब तक हम सहनशीलता पूर्वक समझते हुए इसके उद्गम को नहीं देखते हैं। इसी प्रकार हमें बेहतर सामाजिक भविष्य के लिए कार्य करने में तब तक कोई रुचि नहीं होगी जब तक हमें उस सामाजिक व्यवस्था जिसमें हम रहते हैं की दुर्बलताओं तथा अभावों का स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होगा। सामाजिक अध्ययनों से हमें अपने समय की सामाजिक संरचनाओं की समीक्षा करने के साधन प्राप्त होने चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें उस समाज के जिसमें हम रहते हैं प्रत्येक पहलू का यथार्थ परक ढंग से तथा पूर्ण रूप से वर्णन करना चाहिए। यदि यह कार्य भलीभांति हुआ हो तो सामाजिक अध्ययनों का आलोचनात्मक कार्य स्वाभाविक व अपरिहार्य रूप से प्रकट हो जाएगा। हमारी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का कोई उपयुक्त विवरण अपरिहार्य रूप से उनकी दुर्बलताओं एवं विफलताओं तथा उनकी शक्ति व सफलताओं का रहस्य उद्घाटन करेगा। अतः सामाजिक आलोचना केवल सामाजिक अध्ययनों का ही कार्य नहीं है, परंतु यह निश्चित रूप से शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रति उनके योगदान का अपरिहार्य पहलू है। इसके अतिरिक्त उस समय समाज के प्रति शिक्षा का तत्कालिक उत्तरदायित्व एक बेहतर सामाजिक प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना है तथा एक यथार्थवादी संकेत देना है कि हम इसे किस प्रकार शनै-शनै शांतिपूर्ण तथा सूझवान ढंग से अस्तित्व में ला सकते हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव समाज तीव्रता से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहा है जहां आदर्श राज्य या अराजकता ही विकल्प हैं। यथार्थवादी शिक्षा द्वारा समाज का निर्देशन ही एकमात्र साधन प्रतीत होता है जिससे हम आदर्श राज्य प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एकमात्र तर्कसंगत आशा प्रदान करता है कि यह पग हिंसा और विनाश के बिना उठाया जा सकता है। इस मामले में शिक्षा का भी बहुत निश्चित आत्महित है। जब तक हम आर्थिक विध्वंस, सामाजिक अराजकता तथा तानाशाही से नहीं बचेंगे तब तक गरिमा, स्वतंत्रता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थिति में व्यवस्थित शिक्षा को बनाए नहीं रखा जा सकता। यदि शिक्षा को स्वयं को बचाना है तो इसे लोकतांत्रिक संस्कृति व सभ्यता को बचाना होगा। हम जानते हैं कि शिक्षा अतीत की विरासत को आंखें मूंद कर संरक्षित रखती है, आलोचनात्मक चयन का कोई महत्वपूर्ण दिखावा भी नहीं करती है। आश्चर्यजनक बात है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था की आलोचना भी बहुत कम होती है। यदि हमें उन दुर्बलताओं को खोजना है जिनसे स्वतंत्र तथा व्यवस्थित समाज के अस्तित्व को खतरा है तो सामाजिक व्यवस्था की आलोचना पूर्णतया अनिवार्य होगी। यह स्थिति इस कारण से है कि शिक्षा के सामाजिक आलोचना के कार्य में विफल रहने के कारण इसमें अधिक कुशल सामाजिक व्यवस्था की योजना करने का अभाव पैदा हो गया है। वास्तव में यथार्थवादी प्रेक्षकों को स्वीकार करना होगा कि सामाजिक सुधार के मार्ग में औपचारिक शिक्षा सबसे बड़ी रुकावट सिद्ध हुई है। यह साहसपूर्ण प्रयोग करने की अभिवृत्ति की अपेक्षा सामाजिक असहिष्णुता की भावना को प्रेरित करती है। यह लोकतांत्रिक सभ्यता को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुधारों तक को हतोत्साहित करती है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में शिक्षा से भारतीयों के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी व स्थायी परिवर्तन हुए। इसने समाज को नई संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्य भी दिए। पेज नंबर 146। शिक्षा ने आधुनिक जीवन शैली, विकसित संचार प्रणाली, नौकरशाही में भारतीयों की भागीदारी की उच्चतर दर, कानून व न्याय की संस्था तथा अधिक राजनीतिक गतिविधियों की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में स्कूलों व कॉलेजों के विस्तार, प्रिंटिंग प्रेसों के खुलने से बड़ी संख्या में भारतीयों में आधुनिक तथा पारंपरिक ज्ञान का व्यापक संचार हुआ। पुस्तकों, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों के प्रकाशनों ने लोगों के ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया में बहुत योगदान डाला है। शिक्षा ने वास्तव में सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन तथा विशेषकर राष्ट्रीय जागृति की प्रक्रिया तेज करने में योगदान दिया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद की अवधि व्यापक स्तर पर शिक्षा के प्रसार का युग है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या जो 1951 में 2 लाख थी, 1985 में बढ़कर 5.5 लाख हो गई। मिडिल व सेकेंडरी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं लगभग 10 गुना बढ़ गई हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षाएं देने वाली संस्थाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जनसंख्या में वृद्धि की दर तथा शिक्षा के प्रति हमारे संकल्प को देखते हुए आगामी वर्षों में गुणात्मक विस्तार की दर अधिक होने की संभावना है। कई विकासों के बावजूद स्कूलों में लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा समाज के गरीब वर्गों के बच्चों की भर्ती कम हो रही है। शिक्षा की नई नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता तथा विशेषकर उन लोगों की आवश्यकता की ओर ध्यान देने पर बल दिया गया है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। तथापि शिक्षा ने भारत में कई परिवर्तन किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षा समाज के एक विशेष वर्ग की शक्ति व प्रतिष्ठा में योगदान डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसने शहरी रोजगार का क्षेत्र बढ़ाने के अतिरिक्त शिक्षित लोगों में आत्मसम्मान की भावना भी पैदा की है। शिक्षा ने वास्तव में शिक्षित लोगों में सांस्कृतिक भेद कम करने तथा समानता बढ़ाने में बड़ा काम किया है। यद्यपि भारतीय लोगों के सभी वर्गों की शैक्षिक अवसर तक समान पहुंच नहीं है, तथापि शिक्षा ने मूल्य प्रणाली, व्यवहार, जीवन शैली के परिवर्तन में सकारात्मक रूप से योगदान दिया है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी जाति को दबदबे का रुतबा पाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। शिक्षा से जाति के सदस्यों का दर्जा ऊंचा होता है। नंबर 3, शिक्षा द्वारा पाश्चात्यकरण की शक्तियों को भी सहयोग मिला है। पुरानी संस्थाओं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि में शिक्षा द्वारा ही परिवर्तन हुआ है। पाश्चात्यकरण से मानवतावाद के मूल्य आए जो जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु, लिंग के भेदभाव के बिना सभी मनुष्यों के कल्याण की चिंता करते हैं। नंबर 4, शिक्षा ने भारत में आधुनिकीकरण की शक्तियों को आसान कर दिया। इससे पश्चिमी देशों, उनके विचारों, मूल्यों, आकांक्षाओं व संस्कृति से संबंध बनाने की प्रक्रिया बढ़ी है। शिक्षा ने ज्ञान की शक्तियों को तेज किया है। राजा राम मोहन रॉय ने पश्चिमी बंगाल में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 6, शिक्षा ने भारत में धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया को भी आसान किया है। धर्म निरपेक्षता सेकुलराइजेशन का अर्थ है कि जिस बात को पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसी नहीं रही, तथा इसका अर्थ भेदभाव की प्रक्रिया है जिसका समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा नैतिक पहलुओं पर परिणाम होता है। M.N. श्रीवास्तव, इसने पारंपरिक विश्वासों, मूल्यों तथा विचारों की जगह आधुनिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान को लाकर बुद्धिवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। पेज नंबर 147। सातवां, शिक्षा ने भारत में राष्ट्रीय राजत्व प्राप्त करने में सहायता की है। स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के शिक्षित उच्च वर्ग ने सक्षम नेतृत्व प्रदान किया।